ओम शांति। कल की बाबा की मुरली, इसको क्या अच्छा लगा? कल की मुरली और आपके साथ ही रंग लगाना है। हाँ, आप बोलो। संस्कार मिलन, एक बहुत बड़ी पॉइंट थी, संस्कार मिलन की रास करो और डेट फिक्स करो। और बोलो, परमात्मा के संग की रंग लगाना ये होली, ये और कोई नहीं करता। और बोलो, बड़ा होने वाला है, ये बात आपको अच्छी लगी, बहुत ठीक है। और मनसा सेवा, और इसका भी टाइम फिक्स करो, संसार को सकास देने का, इन दुखी आत्माओं को, प्रकृति को सतो प्रधान भी बनाना है, या ऐसे ही चल जाएगा कुछ भी हो? बाबा पूरे हाँ या ना करो, सबने ना की। हाँ, बाबा के बच्चे सदा सेफ। क्या उदाहरण दिया? जैसे चारों तरफ आग लगी, बिल्ली के बच्चों की कहानी है, या परमात्मा के बच्चे सब सुरक्षित, आग का कोई असर नहीं। और कौन सी दो चीजें बहुत वैल्यूबल है? एक 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 सेकंड और एक एक संकल्प। क्यों वैल्यूबल है? इनका संबंध पूरे 21 जन्मों से है। इनको नष्ट किया तो प्रारब्ध में बहुत अंतर पड़ जाएगा। शुभ भावना और शुभ कामना से क्या होगा? क्या होगा? कहां की ये बात बाबा ने? संस्कार मिलन के लिए। तो इन बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। बाबा के लिए तो ये विनाश बहुत छोटा है, क्योंकि उसे तो सारी दुनिया खाली करानी है। किसके लिए? हमारे लिए। देखो कितना प्यार है उसका हमसे, सबको कहेगा हटो अब, मेरे देव कुल की आत्माएं आ रही हैं, हटो। और उनके लिए सब कुछ तैयारी भी करा देगा। न जाने क्या क्या होगा, न वैज्ञानिक समझ पाएंगे, न और कोई, क्योंकि सारे ग्रह बदलेंगे। बहुत जबरदस्त परिवर्तन है। बहुत सारे देश सागर में चले जाएंगे, धरती सीधी हो जाएगी। अभी भी सुना 4 इंच खिसक गई है, 4 इंच बहुत होता है, टेढ़ी है ना थोड़ी सी, थोड़ी सी सीधी हुई, 4 इंच नीचे से खिसकी ना, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं महाविनाश में होनी है। भारत में भूकंप ज्यादा होंगे, क्यों? क्यों? सारा सतयुग का माल कहाँ है? नीचे हमारे जाम बैठे हैं, उसके नीचे है सारा, वो सब ऊपर आएगा, सब ऊपर आएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा। देखो जापान में हाहाकार हो गया ना, छोटी घटना नहीं। हम तो देख लिया, सुन लिया, चलो सकास दे दी, ओम शांति, लेकिन जिनके साथ हुआ है, हाँ हम सकास देंगे तो क्या क्या होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कितना भयानक विनाश होता है, सबका सब कुछ नष्ट। जिन्होंने सब कुछ कमाने में अपना सब कुछ लगा दिया, धन लगाया, समय लगाया, एनर्जी लगाई, लड़ाई की, टेंशन किए, पाप किए, और वो पाप का पैसा सेकंड में सागर में, ट्रेन की ट्रेन सागर में चली गई, पता नहीं चला कहाँ गई है। पुण्य आत्माओं को बहुत मदद मिलेगी। देखो जब ऐसे भूकंप होते हैं तो बहुत सारे मनुष्य तो दब जाते हैं अंदर, और उनकी मृत्यु नहीं होती। सबसे खतरनाक वो होता है जिन्हें थोड़े जो दब गए सब मरी गए हों, बहुत आप सुनते ही हैं, बहुत लोग जिंदे रहते हैं। अभी न्यूजीलैंड में हुआ था तो SMS कर रहे थे अंदर से कि हम यहाँ हैं, जिंदे हैं, हमें निकालो। ऐसे में हमारी सकास भिन्न भिन्न तरह से आत्माओं को मदद करेगी। कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो ऐसी ऐसी विकराल स्थिति में होंगी, जो भगवान को पुकार रही होंगी, हमें छुड़ाओ इस शरीर से, सिर पे चोट लग गई, खून बह रहा है, कोई डॉक्टर तो है नहीं, कोई पट्टी करने वाला तो है नहीं, अति कष्ट होगा ना। हुक्म में क्या क्या होता, हाथ कट गए दोनों, पैर दबे हुए चिल्ला रहे अंदर, न कोई सुनने वाला, न कोई सांत्वना देने वाला। ऐसे में हमारी सकास उन आत्माओं को दहेज से मुक्त करेगी, एक बड़ा काम। दूसरा, जिनको बचाया जा सकता है, जो ऐसी स्थिति में है वहां तक कोई ना कोई पहुंच जाएगा, हमारी सकास ये मदद करेगी, वहां तक कोई ना कोई पहुंच जाएगा। तीसरी मदद होगी कि वहां अंदर पड़े हुए मनुष्य को एक एक क्षण कितना लंबा होगा, तो उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसा लंबा काल उनका फटाफट बीत गया। इसके अलावा बहुत आत्माओं को शांति प्राप्त होगी, क्योंकि उस समय अशांति बहुत ज्यादा होगी, मरने वालों को भी अशांति, जो जिंदे हैं उनको कई गुनी अशांति। मरने वाले आत्माएं सूक्ष्म शरीर से वहीं भटक जाती है ना, उनका मोह अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, अपने बच्चों के पीछे, वहीं वो भटकती रहती हैं, उनमें बहुत अशांति, बहुत दुख के वाइब्रेशन। इसमें उन्हें सांत्वना मिलेगी, उनका वो मन जो पीड़ित है दुखों से वो शांत होगा। बहुत बड़ा काम होगा जो बहुत सकास देंगे, जिनका योग बहुत ज्यादा होगा, ये जो आत्माएं भटक गई, जिन्हें अब लंबा काल शरीर नहीं मिलता, उन्हें जल्दी ही शरीर मिल जाएगा, पुनर्जन्म मिल जाएगा। तो जिंदों को भी, मरने वालों को भी, सृष्टि परिवर्तन में भी, प्रकृति को सतोप्रधान बनाने में भी हमारी सकास बहुत बड़ा काम करती है। प्रकृति को पवित्र बनाएगी हमारी प्योरिटी। आप ध्यान दें, कल बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामनाओं के साथ बाप से मिली हुई किरणों के द्वारा सबको बांटो भी सहारा दो। जिनको तुम सहारा दोगे वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, तुम उनके पूर्वज अब भी हो, पर पूर्वज वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और मन से कहेंगे अपने समय पर हमें सहारा दिया। देखो, एक बहुत सुंदर चीज है, एक बहुत दुखी व्यक्ति है, अपने इस देव को याद कर रहा है और उसका इस देव उसे सामने दिखने लगे तो क्या होगा, उसके दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुख मूल रूप से मन में होता है ना। शरीर का दुख कितना भी हो, मूल रूप में उसका इफेक्ट मन में होता है। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारे फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे, उन्हें आभास होगा कि हमारे रक्षक, हमारे फरिश्ते, वो उनको अपने देव मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म वाले देवी देवताओं को, तो वो हमारे साथ हैं, ये उन्हें फीलिंग होगी। हम में से जिन्होंने अपना फरिश्ता स्वरूप बहुत अच्छा बनाया है, जो डबल लाइट रहे हैं, सचमुच फरिश्ते बन गए, बाबा उनके द्वारा ये बहुत सेवा करेगा। तो आत्माओं को फरिश्ते उनके आसपास विचरण करते हुए दिखाई देंगे और वो समझेंगे सहारा मिल रहा है, हमारे रक्षक हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि सब तो बाबा के बच्चे हैं ना, और बाबा के बच्चे चिल्ला रहे हों दुखों में, तो ये जैसे उसकी भी सहन शक्ति से परे होता है, कहा था ना तीन मुरली पहले, सहन नहीं होता बाप से लिए लिए रोक लिए चिल्लाना। तो बाबा भी चाहता है जल्दी से समाप्त हो, और हम भी संकल्प करते हैं कि जल्दी से समाप्त हो। दुनिया की दृष्टि में ये बुरा संकल्प है, पर ये सभी के दुखों को समाप्त करने के लिए कल्याणकारी संकल्प है और हमसे हम सबके एक साथ उठे हुए संकल्प फलीभूत होते हैं। क्या समझती है माताएं? जल्दी खेल पूरा हो या नहीं, हमारे बच्चे बड़े हों, शादी करें, पोते हों, उनका मुंह देखें, फिर बिना सो माताओं से पूछते हैं, क्या कहेंगी माताएं? निकल नहीं रहा मुख से। भाई क्या कहेंगे? कुमार क्या कहेंगे? कुमार तैयार है, कुमार तैयार, जल्दी हो जाए। कष्ट होता है? नहीं, जल्दी हो, सबके दुख समाप्त हो। माताओं को तो रहता है जल्दी ना हो, अभी ये काम पूरे हो जाए फिर हो, पर ये सब जल्दी होगा क्योंकि अब संसार में बहुत दुख बढ़ेगा। बाबा कभी कहा करते थे कि बाप तो विनाश का ऑर्डर अब भी दे दे, पर जब बाबा देखेगा उसके बच्चे भी बहुत चिल्ला रहे हैं, तो विनाश तब होगा जब हम नहीं चिल्लाएंगे लेकिन हम चिल्लाने वालों को मदद करेंगे, हमारी ऐसी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो सभी सकास देने के समय निश्चित करें। बाबा के संदेश में भी था, मुरली के पीछे संदेश है ना, बिंदु बनो, बिंदु देखो, तीसरा संकल्पों को बिंदु लगाओ और सकास दो। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ना, बिंदु सब बिंदु, बातों को भी बिंदु समा, लंबा नहीं चलाए, तीन बिंदु इन्हें बाबा कहेंगे। पहले कहते थे आत्मा परमात्मा और रामा, पर ये तीन बिंदु बहुत सुंदर, मैं आत्मा बिंदु निराकार स्वरूप में आ जाए, सब आत्माएं हैं इस स्वरूप में देखें और संकल्पों को बिंदु लगा दें, शांत कर दें, तब सकास देंगे तो हमारी थोड़े समय की भी सकास आत्माओं को सुख प्रदान करेगी। तो ये बाबा ट्रायल भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, रिहर्सल इसे कहते हैं, और हम सब के लिए दोनों बातें हैं। वैराग्य भी बढ़ेगा ब्राह्मणों में, वैसे तो ब्राह्मण संपूर्ण बन नहीं रहे हैं तो समय बनाएगा ना, वैराग जबरदस्ती बनाएगा, ये सब देख के तो वैराग आएगा ही, थोड़ा तो आता है, यहाँ भी होगा, फिर ज्यादा झटके यहाँ लगेंगे, क्योंकि ये तो आपकी बात ठीक है, कहीं और की माँ मरे तो हम कह देंगे ड्रामा, अपनी मरे तो रोना शुरू, तो जब तक अपने पे न आए तब तक वैराग आता नहीं, दूसरे मर गए चलो सकास दे दो, हम ये सोच लेते हैं, लेकिन अपने मरे तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत वैराग आएगा। तो बाबा को ब्राह्मणों को भी संपूर्ण बनाना है और इस योग भी बनाना है कि हम दूसरों को सकास दे सकें, क्योंकि सभी को मुक्ति का वरदान भी हमें ही देना है ना, मुक्ति का वरदान का अर्थ है घर ले जाने का मार्ग दिखाना, घर ले चलना, जैसे उन्हें जाएंगे तो सेकंड में गाइड करेंगे, इसका अर्थ ये तो नहीं हम आगे आगे चलेंगे वो पीछे आएंगे कोई देखेगा, ये तो सेकंड का काम है, अब यहाँ है अब वहां है, लेकिन हमारे संकल्पों से ये काम होगा, हम मास्टर मुक्तिदाता बन जाएंगे। इसलिए एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को सामने रखकर हमें पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करना है। देखो बाहर कहीं भी विनाश हो, सब ब्राह्मणों को ये तो लगता है ना, बाबा कह रहे हैं अचानक, सबको याद तो आता है ना, कभी भी यहाँ भी हो सकता है, और ये सब बहुत हो। अब देखो सबसे बड़ी वहां की बात, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, चार चार एटॉमिक रिएक्टर में आग लग गई ना, वहां नष्ट हो गई, उनसे जो किरणें फैलती है ना, मैं सिंपल भाषा बोलता हूँ ब्राह्मणों, उसे जो धूल कण फैलते हैं, जो किरणें फैलती हैं, वो अति अति खतरनाक हैं। तो शायद कल के अखबार में आ जाए कि पहली बारिश जो होगी, अभी भी हो सकती है नहीं पहली बारिश, अब के बाद जो कहीं भी बारिश हो उसमें कोई भी भीगे नहीं, क्योंकि ये जो सारे धूल कण, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ये जो आकाश में फैल रहे हैं, ये पानी के साथ नीचे आएंगे, तो इनसे बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत इफेक्ट हो सकता है, और ये बिल्कुल संभव है कि कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो आकाश में छोड़े हुए सैटेलाइट सभी काम करना बंद कर दें और ये हमारे सबके मोबाइल खिलौने रह जाएं, टीवी और नेट और कंप्यूटर सब पूरा हो जाए, तब आप सोचो संसार का हाल क्या होगा। केवल फोन की बात नहीं, हम सबको आदत है फोन नहीं है तो चलो दो चार दिन में फिर ठीक ठाक है तो बात कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों कितने करोड़ों लोगों की नौकरी है आजकल इन सब में, वो सब खत्म हो गए, सब बेकार कंप्यूटर डब्बे रह जाएंगे वो भी। सोचो ऐसे में कितनी बड़ी अशांति और टेंशन इस धरा पर हो जाए, करोड़ों कितने करोड़ लोग इन कामों में लगे हुए, मोबाइल के कामों में कितने करोड़ों लोगों को नौकरी प्राप्त है, तो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये विनाश के बहुत भयानक स्वरूप होंगे, इसलिए हमें काम क्या आएगा, चारों राग लगेगी हम सेफ रहेंगे, हमें काम क्या आएगा, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, एक शब्द और जोड़ेंगे, हमारे पुण्य कर्म, बाबा के कार्यों में दिया हुआ सहयोग, वही पुण्य है ना सबसे बड़ा इस समय। देखिए जो पुण्य हम कर सकते हैं इस समय वो चारों युगों में और कोई नहीं कर सकता, परमात्मा कार्यों में सहयोग चाहे धन से, देखो बाहर लोग धन अपना कितना लगाते हैं इधर उधर पुण्य के काम में, वो भी पुण्य, आजकल तो पुण्य के नाम पे कमाई भी हो गई, भाई कॉलेज खोले हैं इसने 10, लेकिन वो पुण्य नहीं किया वो बिजनेस किया, आजकल तो बिजनेस हो गया ना, पुण्य थोड़ा ही है। हमारा पुण्य है परमात्म कार्य में धन लगाना, आप सब धन लगा रहे हैं, मन भी लगा हुआ है यहाँ, हमारी भावनाएं भी लगी हुई हैं, हमारे संकल्प भी लगे हुए हैं, बोल भी लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य और श्रेष्ठ स्थिति यानी योग, श्रेष्ठ स्थिति हमारी प्योरिटी, ये सब हमें काम आएंगे विनाश काल में। सबको अनुभव होगा जिसकी जैसी स्थिति उसे वैसी ही सुविधाएं प्राप्त। सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं, सुविधा माना हम रहते हैं तो हमें पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें लाइट चाहिए, गर्मी ना हो, हम परेशान ना रहें, ये सुविधाएं, और सुविधाओं की तो बात ही नहीं रहेगी। ये सुविधाएं भी हमारी स्थिति अनुसार हमें प्राप्त होगी, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें ये चीज भी प्राप्त नहीं होगी, समय पे पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन की भी तंगी हो जाएगी, अनाज की भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी ध्यान देंगे हमारा एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू हमें आपदा काल में बहुत ज्यादा महसूस होगी कि हमने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है तो बाबा हमें सहयोग दे रहा है, ऑटोमेटिक है ये। कल जैसे बाबा ने कहा ना, प्रकृति को सबने तंग किया है तो प्रकृति तंग करेगी, ऑटोमेटिक है ना ये, इसमें किसी का दोष नहीं। हम बाबा के कार्य में सहयोग देंगे हमें उसका सहयोग स्वतः ही मिलेगा, ये नहीं कहेंगे भगवान भी कोई पक्षपात करता है, ये ऑटोमेटिक है, ये स्वतः ही होने वाली प्रक्रिया है। तो हम सभी ध्यान देंगे हमारे क्षण समय और हमारे संकल्प कहाँ जाते हैं, सारा दिन ये सूक्ष्म चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत आत्माएं, ब्राह्मणों में बहुत आत्माएं समय को अभी भी वैल्यू नहीं दे रही, घंटों घंटों ऐसे ही बिताते हैं बातों में पचिंतन में, इससे हमें बचना है या नहीं। सभी अपने से बात करेंगे, मेरे कहने से काम नहीं होगा, सभी अपने से बात करें, समय बहुत कीमती है। हर क्षण हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, हर क्षण हम स्वयं को परमात्म रंग में रंग सकते हैं। ऐसा रंग जो उतरेगा ही नहीं 2500 साल तक। हमारा एक एक संकल्प वर्तमान में भी हमारे सुखों का या दुखों का कारण है। हमारा एक एक संकल्प हमारी खुशी या उदासी को जन्म देता है, यही है ना? हमारा एक एक संकल्प हमें उत्साह उमंग में रखता है या निराश कर देता है, किसी को उदास कर देता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारे संकल्पों में क्या है, इस पर हम ध्यान दें। बातें आती हैं, हमें बातें सुनने को मिलती हैं, तब हम क्या संकल्प करते हैं। विजय हमारी ही होगी, हमें ये संकल्प है, या पता नहीं क्या होगा, हमें ये संकल्प है। हमारे साथ बाबा है, सब कुछ ठीक होगा, हमें ये संकल्प है, या पता नहीं ऐसा ना हो जाए, हमें ये संकल्प है। चेक करें, हम सारा दिन हमें संकल्पों को देखने का एक सुंदर मौका मिलता है। थोड़े संकल्पों पे हम ध्यान देंगे, सारा दिन एक एक संकल्प को तो हम बैठ के जांचेंगे नहीं। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही थी। व्यक्त बाबा थे, बाबा अपने कमरे में आए थे, तो ये प्रश्न किसी हमारे बुजुर्ग दादा ने किया था, तो वो नहीं है कि बाबा हम एक एक संकल्पों को कैसे चेक करें सारा दिन। तो बाबा ने कहा, देखो रेल का डब्बा, इंजन, गाड़ी पटरी पे लगा दी गई। अब उसे कोई रोज चेक थोड़ा ही किया जाता है कि वो पटरी पे है या नहीं। सवेरे अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ स्थिति में, स्वमान में स्थित कर दो, सारा दिन स्वतः ही वो पटरी पर रहेंगे। तो हमारे पास जो समय है सुंदर सवेरे का, बीज अमृत वेला, उस पर हम अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों को सेट करते हैं, बल भरे अपने में। बाबा वरदान देता है, बल देता है, भरे वो वरदान लें। अगर हम नहीं लेंगे, ऐसे ही खाली मिस करते रहेंगे और फिर एक एक संकल्प को चेक करेंगे, तो चेक करना हमें उदासी लाएगा ना, ये तो निगेटिव चल रहे हैं, ये तो कंट्रोल ही नहीं होते, क्या करें, बहुत संकल्प चल रहे हैं। इस चेकिंग से तो आनंद नहीं आएगा ना। हमें चेकिंग में आनंद तब आएगा जब हम देखेंगे हमारे संकल्प बहुत सुंदर चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा, आनंदित होगी ना आत्मा। तो हम रोज सवेरे कुछ श्रेष्ठ संकल्पों पर अपने सेट करें। यही काम तो मुरली करती है रोज। क्यों बाबा जोर देता आया पीछे, मुरली मुरली मुरली? क्योंकि इससे हमारे श्रेष्ठ संकल्प आत्मा में भरते जाते हैं। मुरली का एक ये भी लक्ष्य है, सुंदर संकल्पों से स्वयं को भरपूर करना। बाबा हमसे बात करता है, बहुत सुख हमें मिलता है मुरली से, उन बातों के साथ सुंदर संकल्पों का बल स्वयं में भरता है। तो सभी इस बात पर बहुत ध्यान देंगे। अब आ जाए संस्कार मिलन पर। संस्कार मिलन का क्या अर्थ है, पहले इसका अर्थ देखेंगे। बोलो संस्कार मिलन। माताएं बैठी हैं, आप सभी ने अपना गृहस्थ जीवन पूरा किया है, बहुत पूरा किया है। पति पत्नी के बीच में संस्कार मिलन, क्या कहेंगे इसको, एडजस्टमेंट? और बोलो, बताओ, माताओं से पूछ रहे हैं। सबको अनुभव है, कहीं टकराव, कहीं प्यार, कहीं सहयोग, कहीं असहयोग। भाई कहेगा यज्ञ में मुझे 1000 डालने हैं, माता जी कहेंगी नहीं 200 ही डालने हैं, झगड़ा हो रहा है दोनों का। अब भाई कह रहा सोच रहा मैं चुपचाप डाला हूं, इन्हें बताऊं नहीं, ये हो गया संस्कार मिलन की रास या गड़बड़ रास? गड़बड़ रास हो गई है। विचार मिलन पहली बात है, विचार मिलन, इससे संस्कार मिलन अच्छा होगा। दूसरी बात है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, समझना 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 अंडरस्टैंडिंग और सम्मान एक दूसरे के विचारों के लिए। ये बात युगलों के बीच की नहीं, सबके बीच की। हम संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे के विचारों को समझना सम्मान देना। संस्कार तो सबके दिखाई देते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, ये नहीं। अगर हमें सचमुच संस्कार मिलन करना है तो सबको, बहुत सुंदर तरीका है ये, सबको उनके देव स्वरूप में देखना, सहज विधि हो जाएगी। सबको देव स्वरूप में देखने से हमें ख्याल रहेगा ये तो सब महानात्माएं हैं, हम इनका केवल वर्तमान देख रहे हैं, पर ये तो बहुत महान है। वर्तमान देखते हैं तो टकराव हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति सोच रहा है, देखो बाबा बहुत बार कह चुके हैं पीछे, मैं राइट हूँ। मैं मुझे बहुत सारे भाई बहने बात करते हैं, दोनों कभी कभी आ जाते हैं। माता जी कहती है मेरी इच्छा है यज्ञ में इतना दे दें, ये भाई कहते हैं नहीं देना है, धीरे धीरे देना है। दोनों में टकराव होता रहता है और दोनों सोच रहे हैं मैं राइट हूँ। जो कह रहा है देना है वो भी सोच रहा है मैं राइट हूँ, बाबा तेरा लगा दो, और जो कह रहा है नहीं देना है वो भी सोच रहा है मैं राइट हूँ, बच्चों को भी तो भी देना है, उन्हें भी काम आएगा, वो भी सोच रहे हैं मैं भी राइट हूँ। हर व्यक्ति अपने को राइट समझ रहा है, चोर भी राइट समझ रहा है, डाकू भी राइट समझ रहे हैं, उग्रवादी भी राइट समझ रहे हैं, तो करप्शन लेने वाले नेता भी राइट समझ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं, रोंग नहीं समझ रहे, वो भी तो ले रहा है, मैंने लिया तो क्या है, सब राइट समझ रहे हैं, पापी भी अपने को राइट समझ रहे हैं। यही तो बुद्धि के भारी होने का सबसे बड़ा प्रतीक है ना, बुद्धि भारी हो गई, मैली हो गई है कि मनुष्य पाप को ही राइट मान रहा है, पुण्य तो भूल ही गया है, पुण्य के नाम पे तो थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, मंदिरों में लगा देते हैं, बस उसमें भी स्वार्थ रहता है, नाम हो जाए हमारा तो वो भी कट जाता है। हम सभी संस्कार मिलन के लिए अपने को हल्का करें। संस्कार मिलन का सीधा सार्थ हो गया संस्कारों का टकराव न होना, और इसके लिए बाबा ने धारणा कौन सी बताई, शुभ भावना, शुभ कामना। इसका अर्थ क्या है प्रैक्टिकल अर्थ, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को सिखाया जाए। आपके पास दो लोग काम कर रहे हैं, एक उनमें से ठंडा है, एक को कम बुद्धि है, वो देर से समझता है, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, ये दोनों अच्छे नहीं है, हम इन्हें नहीं रखेंगे। और दूसरी स्थिति है कि आप उन्हें सिखाने लगो, ठंडे को चुस्त बना दो, जो कम समझता है उसको समझदार बना दो, तो संस्कार मिलन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो किसी को भी रिजेक्ट कर देना, किसी को भी हटा देना, किसी को भी निकाल देना, ये तो कॉमन बात है, इसमें तो कुछ जाता नहीं, लेकिन किसी को समा लेना, किसी को सिखा देना, आगे बढ़ाना, ये महान आत्माओं का लक्षण है। ये शुभ भावना, सिखाना है, आगे बढ़ाना है। शुभ भावना केवल ये नहीं, इनका भी कल्याण हो ये संकल्प है, पर केवल ये नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर भी दूसरों को आगे बढ़ाना, उनका इस रूप से कल्याण करना। तो हम अपनी भावनाओं को बदलेंगे, भावना जो निगेटिव हो गई है उन्हें बदल कर ठीक करें, सभी चेक करेंगे बाबा की उंगली सुनकर, हमारी परिवार के लिए कैसी भावना है। ब्राह्मण परिवार देख लो कैसी भावना है, ब्राह्मण परिवार में टकराव है, हम ये कहते हैं बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है, देवताओं से भी अच्छा है, ये तो कहने की बात है, वो तो बाबा हम सबको नशा चढ़ाता ही है, लेकिन टकराव प्रैक्टिकल में है। जहाँ तहाँ है, वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो मैंपन के कारण है। मैंपन के कारण ज्यादा टकराव है, ईगो अहम मैंपन। और किसी को क्रोध है, उसके कारण टकराव है, ये दूसरी बात। आज हमने देखा नीचे एक भाई सेवाधारी बड़ा गर्म हो रहा, दूसरे का मैं उन्हें छुड़ा रहा, छूट के चले गए, फिर आ गया, उसको शांति नहीं मिली, फिर उससे लड़ने आ गया, उसने देखा है तो गया, फिर उसको दो चार ने पकड़ा, गर्म हो रहा एकदम, मतलब मारने को तैयार। वो भूल गया कि कली तो भगवान की मुरली चली है, उसको कुछ नहीं। तब मुझे बताया ये रोज दो चार से लड़ता है। ये संस्कारों को मिलने नहीं देता, लोग कहा छोड़ दो इसे, इसे आप कहेंगे आप कुछ आपसे भी लड़ना शुरू कर देगा। ये रोज इसका होता ही है झगड़ा दो चार, और उसको बिल्कुल पता नहीं कि मैं झगड़ा करता हूँ। वो कहता ये झगड़ा करते हैं मेरे से, मैं राइट हूँ। और उसका गुस्सा उसके चेहरे को एकदम गर्म किए हुए था। बाहर होता तो लड़ाई झगड़ा किसी से भी उसका होना ही था, वहां तो बहुत सारे भाई थे, दोनों को पकड़े हुए थे अलग अलग। तो संस्कारों को मिलाने के लिए हमें थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, झुकना पड़ेगा ना, थोड़ा अपने अहम को झुका देना पड़ेगा, तुम बड़े हम छोटे, ये करना पड़ेगा ना। अगर हम भी अहम रख के टकराने लगे तो बाबा की ये आस कभी पूरी नहीं होगी। और बाबा ने तो कहा टाइम फिक्स करो इसके लिए, डेट फिक्स करो। बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा को तो लगता होगा ना ये क्यों लड़ते हैं, मैंने इनको इतना अच्छा ज्ञान दिया, ये देव कुल की कितनी महान आत्माएं हैं, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। उसको जैसे विनाश की बात छोड़ लगी, ये भी बात लगती होगी, ये क्यों लड़ते हैं, डेट फिक्स करो जल्दी, इसके बाद नहीं लड़ेंगे। चिटकी डलवाओ मधुबन में सबसे, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे। तो बाबा की ये भावनाएं भी सुंदर हैं, और बाबा समझते भी हैं कि ये सारे संसार को सुधारने वाले ये तो काम फट से कर सकते हैं, इन्हें तो सारे संसार को सुधारना है, तो इनको अपने को सुधारना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम बाबा की भावनाओं को समझते हुए, बाबा की भावनाओं को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को ठीक करेंगे। अवगुणी दृष्टि जो मनुष्य की होती है एक दूसरे के लिए, उसको हमें ठीक करना है। अवगुणी दृष्टि से क्रोध आता है, हम ये भावना बना लेते हैं ये तो है ही ऐसा, कभी ये भावना बना लेते हैं ये सुधरने वाले नहीं हैं, फाइनल कर देते हैं हम, जो काम बाबा को करना है वो हम कर देते हैं फाइनल, ये सुधरने वाले नहीं है। बदल जाए दुनिया ये गीत गाते हम की जगह तुम, तो सभी संकल्प करें हमें किसी से टकराना नहीं है, क्योंकि टकराव होते ही ज्ञान योग रहता है या बिल्कुल गायब हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। वही संकल्प चलते हैं, बाबा कहेगा मुझे याद करो, मन कहेगा उसे ही याद करते रहो सारा दिन, उसने मुझे ये कहा। एक तो प्यार से मनुष्य याद करता है ना एक दूसरे को, ये घृणा नफरत से, घृणा हो गई, उसे याद करते रहेंगे सारा दिन, उसके शब्द कानों में गूंजते रहेंगे, भगवान ने कितने प्यार से अच्छी अच्छी बात कही वो बाहर निकलते भूल जाएंगी। देखो कैसी वंडरफुल बात है, मैं भी सोचता हूँ कि मनुष्य की बात इतनी गहरी क्यों उतर जाती है कि भुलाए नहीं भूलती, पर भगवान की बात गहरी तो छोड़ो बाहर आते ही साफ, क्या बात है, राज क्या है इसमें भाई बताओ, प्रैक्टिकल है ना, सबका अनुभव है मेरे सहित सबका। भाई किसी ने कड़वे शब्द बोल दिए ऐसे अंदर उतरेंगे 6 साल तक भी नहीं भूलेंगे, इसने ये कहा। और बाबा की मुरली जो आत्मा को तृप्त कर रही है, जो सुख दे रही है, वो भूल जाती है। राज बताएं, बहुत काल का अभ्यास है ये तो, आपने ठीक बात कही, बहुत काल का अभ्यास है। और माताएं क्या कहेंगी, रे अभिमान मैं तो नहीं होता। और बताओ प्रैक्टिकल सी बात, हमारे अंदर जितनी निगेटिव एनर्जी है उतना ही ज्यादा हम निगेटिव बातों को ग्रहण करते हैं, और हमारे अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी प्योरिटी बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव बातें बाबा की सुंदर बातें ग्रहण होती जाएंगी ज्यादा। दूसरी बात है, मनुष्य के शब्दों को जो इंसल्टिंग होते हैं देह भान के कारण हम ज्यादा गंभीरता से ग्रहण करते हैं, और बाबा के शब्दों को क्योंकि हम तब सोल कॉन्शियस कम होते हैं तो बहुत गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। हम सोचते हैं बाबा यही तो बता रहे हैं ना, तुम आत्मा रोज ही बताता है, वो तो हम जान गए हम आत्मा है, तो उसको सीरियसली हम ले नहीं रहे कि बाबा हमें आत्माभिमानी बनाने की दिल कराता है, हम आत्मा हो जाएं। बाबा की बातों को हम गंभीरता से लेंगे तो वो जरूर गहराई तक द्वार करेंगी, उतर जाएंगी हमारे अंतर्मन में। तो बाबा की मुरली हम सभी को ये तीन बातें सिखाती है, सकाश दो, एक एक सेकंड और संकल्प मूल्यवान, और संस्कारों की रास। हम संकल्प करेंगे हम किसी से नहीं टकराएंगे, दूसरे की बात छोड़ दें, हम किसी से नहीं टकराएंगे। टकराने तो लोग आएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमें अपने को मोड़ के चलना है, सरलता से चलाना है, हर बात को सहज भाव से लेना है, तो परिवारों में भी टकराएंगे नहीं किसी से। देखो हरेक के सामने टकराने वाले कोई ना कोई होते हैं, घरों में भी होते हैं ना, एक तो होगा ही कोई ना कोई जो सबकी परीक्षा लेता रहे, परीक्षा लेने वाले भी चाहिए ना, भगवान पढ़ा रहा है तो परीक्षा ही नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। परीक्षा ही ना हो कोई स्टूडेंट पढ़ता रहे 10 साल और परीक्षा ना हो उस स्कूल में, तो आप अपने बच्चों को दाखिला देंगे वहाँ कराएंगे, कहेंगे स्कूल अच्छा नहीं, परीक्षाएं नहीं होती यहाँ तो, और इधर भगवान पढ़ा रहा है, हम परीक्षा से डरते हैं, हम सोचते हैं परीक्षा कभी ना हो कैसा चलेगा ऐसे। बाबा कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा मेरे स्टूडेंट कितने मजबूत हैं, कितने पावरफुल हैं, परीक्षा होंगी, हिलाने वाली बातें आएंगी और हम नहीं हिलेंगे, तो पता चलेगा बाबा को ये महावीर है, अंदर है, और तो कहेगा ना वो भी वाह मेरी पढ़ाई सफल हुई, नहीं तो वो भी कहेगा मैंने रात दिन बीन बजाई इनके आगे, और ये एक ही क्लास में है अब तक, मैंने इतनी इतनी मेहनत की, हम देखते थे ना बाबा को ओम शांति भवन में 16-16 घंटे बाबा रहे, अधिकतर 16 घंटे, 12 घंटे तो बहुत बार रहे, और वो विदेशी जिनकी बाबा ने बहुत पालना की बाबा को छोड़ के चले गए, बाबा को भी कैसा लगता होगा। कच्ची आत्माएं होती है ना बहुत, भगवान की पालना का भी महत्व नहीं समझते कि रात रात भर बाबा बैठकर एक एक को मिलते थे, तब एक एक को सारी रात में भी वही 200 ही मिले विदेशी, बस फिर आएंगे बाबा दो दिन के बाद, कितनी पालना दी। तो उस पालना का महत्व समझकर हम सभी उसका रिटर्न देने का बहुत अच्छा संकल्प करें, ठीक है। इस मुरली को 2-4 बार पढ़ना चाहिए, और ये 3 बातें इसमें सबसे अच्छी बात हुई, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड बहुत महत्व का, और समय की सूचना ये घटनाएं हमें दे रही हैं, तो हम भी सोचें हमारे पास भी कुछ हो सकता है, कभी भी अचानक होगा ना भूकंप, तो अभी हम सोए अभी हो जाए, हम गए या बचे, भूकंप बता के थोड़ा ही आएगा कि मैं कल आ रहा हूँ, फटाफट हुआ अचानक होगा तो हम अपने को तैयार भी करें। चलो अब सभी जापान वालों को ही सकाश देंगे, कैसे देंगे, हम संकल्प करें मैं फरिश्ता आकाश में, ऊपर से सब नजदीक हो जाता है ना, संकल्प करें बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे फैल रही हैं, जापान की आत्माओं को जा रही हैं।